समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्म। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा। एज करिश्मा वॉज टेलिंग यू, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ विच वी हैव लाइंड अप फॉर यू। फर्स्ट लिसनर्स, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया फॉलोज, देन we'll provide you reports, capsules and our tributes at the end of the program. First, we'll begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates two national highway projects worth over 11,000 crore rupees in New Delhi.
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और बाढ़ की दो अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत, राहत तथा बचाव अभियान जारी.
Foreign Secretary Vikram Misri calls on Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli in Kathmandu to hold delegation level talks with his counterpart Amrit Bahadur Oli Rai.
और कोलकाता में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज शाम मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से।
Listeners, now it's time for our segment Dateline India. We will be taking a look at the developments taking place at national or global level. And today, listeners, we will talk about Independence Day and women empowerment. Well, listeners, from the snow-capped peaks of the Himalayas to the coasts of Kanyakumari, from the buzzing cities to the quiet rural towns, a heartfelt Jai Hind to every proud Indian tuning in today from us. Just a few days ago, listeners, we celebrated the glorious 79th year of India's independence. This was the 79th year. And even though the day it's over, the spirit of freedom still, it flutters in every corner of our country. And of course, Karishma, why not? After all, freedom is no longer just a date on the calendar. It's in our scientific achievements, our defense innovations and our healthcare revolutions, and most importantly, listeners, in the rising voices and shining successes of Indian women.
1947 में जब हमें आजादी मिली तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जहां हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, सम्मान के साथ रह सके। आज आइए बात करते हैं उस शक्ति की जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को बदल रही है, भारत में महिला सशक्तिकरण। जी हां, भारत की बेटियां न सिर्फ कांच की दीवारें तोड़ रही हैं, वे इतिहास की नई इबादत भी लिख रही हैं। आइए इस नए भारत की यात्रा पर चलें, जहां महिलाएं न सिर्फ किसी के साथ चल रही हैं, बल्कि अक्सर नेतृत्व भी कर रही हैं।
Yes, we are beginning with this particular vision, and the vision is now taking shape. Well, one empowered woman at a time. From the bustling cities to the smallest villages in our nation, from boardrooms to border posts, women in India, they are breaking barriers, shattering stereotypes almost every day, and then also setting new benchmarks. So talking about women's achievements, let's begin with the corridors of power.
भारत आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पर गर्व महसूस कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो साबित करती है कि भारत में सबसे साधारण पृष्ठभूमि से आई एक महिला भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है। विभिन्न राज्यों में महिला विधायक, सांसद और मंत्री नीति और सुधार का नेतृत्व कर रही हैं। पंचायती राज्य संस्थाओं में 14 लाख से ज्यादा महिलाएं सक्रिय हैं, जिससे भारत जमीनी स्तर पे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वैश्विक स्तर पे अग्रणी बन रहा है। ये केवल प्रतीकात्मक भूमिकाएं नहीं हैं, ये महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर रही हैं।
Rightly said, Karishma, and Karishma was actually focusing on the politics point of view. She was presenting that point of view, and now let's move on to the defense point of view here. Defense and national security. Let's tell you about some notable names here today. Well, names like Flight Lieutenant Avani Chaturvedi, Bhavna Kant, and Mohana Singh. They shine as the Indian women fighter pilots, proving that courage has no gender. And in 2024, let me tell you about that, the Indian Army inducted its first batch of women in the artillery regiment, breaking yet another barrier. Indian women are commanding warships, leading regiments, and also serving at the highest levels of our armed forces, and we are very, very proud of that. As the world watches, Indian women are defending the nation with valor and pride, to which the Operation Sindoor, राइट, इट वाज अ टेस्टमेंट ऑफ।
बिल्कुल, और इतना ही नहीं, व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में भी महिलाएं उद्यमियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार शॉ दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला उद्यमियों में से एक हैं। नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर ने शून्य से अरबों डॉलर का सौंदर्य साम्राज्य खड़ा किया है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से लेकर शहरी तकनीकी स्टार्टअप तक महिलाएं रोजगार सृजन कर रही हैं और नवाचार कर रही हैं और अर्थव्यवस्था में भी बदलाव ला रही हैं। स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने हजारों महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को खासकर टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में मदद की है।
Well, yes, of course, makeup is very dear to all the women, and a woman leading the charge by setting up Nykaa, that's wonderful actually. Now let's also focus on science, technology and space. Well, if there's one place where India has stunned the world recently, it's in space exploration. And listeners, guess what? Women were at the heart of it. Remember the success of Chandrayaan 2 and also Mangalyaan? Well, listeners, women like Ritu Karidhal, and she has been known by the name Rocket Woman of India because of this particular success of hers, and also Minal Rohit. They were key figures in these particular missions. These scientists, they have become role models for millions of young girls, proving that dreams backed by knowledge and courage, they can reach the stars. Well, quite literally now in this particular case.
बिल्कुल, और इसी के साथ अगर खेलों की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी होने का क्या ही जमाना है
जी।
पीवी सिंधु बैडमिंटन में ओलंपिक पदक विजेता है, मैरी कॉम मुक्केबाज में 6 बार की विश्व चैंपियन है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं, और इसके बाद निखत जरीन, लवलीना बोर गोहेन और हरमनप्रीत कौर जैसे नाम घर घर में मशहूर हो रहे हैं। वे सिर्फ पदक ही नहीं जीत रही, वे दिल भी जीत रही हैं और एक पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं।
वेल यस, यू टेल अस अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड एंड वी हैव द नेम रेडी फॉर यू, द नोटेबल वुमेन हु हैव एक्चुअली सरपास्ड द लेवल ऑफ सक्सेस व्हिच वी हैव अर्लियर आल्सो सीन, एंड फॉर इवन वुमेन्स आल्सो सेटिंग अ बेंचमार्क। And, well, in society and grassroots empowerment, the change is not limited just to cities. Well, thanks to schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, Ujjwala Yojana, well, herein, they were giving LPG connections to rural women. They have been provided with that. PM Matra Vandana Yojana, well, here, they have been providing support to pregnant and lactating mothers. One-stop centers for violence survivors. Well, India is witnessing a revolution in healthcare, in safety and also dignity for women, especially in rural and underserved areas. Well, women are not just receiving empowerment, they are becoming agents of change, leading self-help groups, training others as well, and even managing digital and financial platforms.
और इसलिए श्रोताओं, हम एक बात स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि आज हम जिस आजादी का जश्न मना रहे हैं वो सिर्फ तिरंगों और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है। यह चुनने की आजादी, नेतृत्व करने की आजादी, सपने देखने की आजादी और हासिल करने की आजादी के बारे में है। भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर आशा कार्यकर्ता तक इस आजादी की प्रतिमूर्ति हैं। वे नई भारत की पथ प्रदर्शक हैं, एक ऐसा भारत जो मजबूत, समावेशी और अजय है।
Well, yes, rightly said. And actually, empowered women, they not just contribute to a more just and equitable society, they contribute to the success of the whole nation in various fields, as we have broadly covered today. And we, as we celebrate the 79th year of our independence, well, let us salute the spirit of every woman, past and present, who has contributed to this great journey of ours. The road ahead is long, but together with our mothers, our sisters, daughters, and leaders, well, India will march ahead, not just free, but fearless and flourishing. And never forget, empowered women empower the nation.
और इसी के साथ आज की भारतीय बेटियां न सिर्फ इतिहास के पन्नों को नया रूप दे रही हैं, बल्कि आने वाले कल की इबादत भी खुद ही लिख रही हैं।
जय हिंद।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। आज का दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर के न्यायिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच का उद्घाटन हो रहा है और 6 जिलों को न्याय प्रदान करने की नई सुविधा उपलब्ध होगी। ये समारोह न्याय के विकेंद्रीकरण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे पुणे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।
कोल्हापुर के लिए एक सर्किट बेंच की मांग पिछले 5 दशकों से चल रही थी। विभिन्न वकील संघों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों, मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मौजूदा नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और गोवा पीठों के साथ कोल्हापुर सर्किट बेंच अब न्यायपालिका में एक नया स्थान लेगी। इस सर्किट बेंच से कोल्हापुर, सातारा, सांगली, सोलापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन 6 जिलों को लाभ होगा। पहले इन जिलों के नागरिकों को अपने मुकदमे मुंबई में लड़ने पड़ते थे, जिसमें काफी समय, पैसा और मेहनत लगती थी। अब चूंकि इन मुकदमों की सुनवाई कोल्हापुर में ही होगी, इसलिए ये सभी के लिए काफी सुविधा होगी। सर्किट बेंच एक अस्थायी अदालत होती है, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित अवधि के लिए आते हैं और मुकदमों की सुनवाई करते हैं। हालांकि पीठ स्थायी प्रकृति की होती है, इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दोनों स्थानों पर न्याय प्रशासन की पद्धति और प्रक्रिया समान है। हालांकि सर्किट पीठ में न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी होती है, जबकि पीठ में यह स्थायी होती है। कोल्हापुर की वर्तमान सर्किट पीठ को भी भविष्य में पीठ में परिवर्तन किए जाने की संभावना है। यह सर्किट पीठ विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे दीवानी, फौजदारी, श्रम, संपत्ति, जन अधिकार आदि की सुनवाई करेगी। हालांकि कंपनी अधिनियम, कर संबंधी मामलों और एनआईए अदालतों से संबंधित मामलों की सुनवाई मुंबई स्थित मुख्य न्यायालय में की जाएगी। कोल्हापुर शहर 1867 से न्यायपालिका को अपना रहा है। इससे पहले इस शहर में कोल्हापुर के राजा के नाम से न्याय होता था। महादेव गोविंद रानड़े कोल्हापुर के पहले न्यायाधीश थे। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान 1893 में कोल्हापुर राज्य नियम नामक एक स्वतंत्र विधि पुस्तक थी। राजाराम महाराज के काल में 1931 में कोल्हापुर में एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने यह संदेश दिया था कि भारत में न्याय निष्पक्ष और समानता के सिद्धांत पर होना चाहिए। कोल्हापुर सर्किट बेंच का उद्घाटन उनके विचारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज से शुरू होने वाली यह सर्किट बेंच न केवल न्याय के लिए एक नई सुविधा है, बल्कि न्याय के विकेंद्रीकरण और न्याय की सुगमता इनका एक ठोस आधार भी है। 50 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद प्राप्त ये सफलता कोल्हापुर और पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए न्याय के नए युग की शुरुआत होगी। परिक्रमा के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर।
From Pune, let's head to Andhra Pradesh. Well, the Andhra Pradesh government has managed to control the menace of drugs by initiating a series of steps like opening of checkposts at vulnerable places, electronic surveillance, and more. The state remained firm on the drive to control the spread of drugs. A cabinet subcommittee was formed with the inclusion of ministers of education, health, excise, tribal welfare as well. An elite anti-narcotics group for law enforcement was also set up with its headquarters in Amravati. Another step was the launch of task forces in Rajamahendravaram and Vishakhapatnam. We have a report. Listen in.
Last year, 831 cases were booked, 2,114 persons were arrested, alongside 27 liters of hashish, oil and 293 carrier vehicles. Assets worth Rs. 7.75 crore belonging to seven kingpins involved in promoting ganja cultivation was also seized. The action followed detection of their financial transactions. As part of Operation Garuda, nearly 100 joint teams of officials had raided medical shops across the state and seized 150 of them via violation of provisions of the Drugs and Cosmetics Act 1940. The Eagle teams carrying out joint operations in 27 trains linked to Odisha has led to the arrest of 6 persons. Today, Eagle cells are functioning across all districts in the state, and entire district DCP KGV Sarita has this to say.
Nasha Mukt Bharat, which is a campaign taken up by the government of India as well as government of Andhra Pradesh also. In the lines of that, Andhra Pradesh government has formed an Eagle department, a separate department. It is an elite anti-narcotics group of law enforcement, wherein we have taken up many programs like total eradication of the cultivation of ganja as well as prevention of the prevalence of the narcotics and psychotropic substances. So in view of this 5th anniversary of Nasha Mukt Bharat Abhiyan, we have taken a pledge telling that we are against cultivation, consumption, production, distribution, transportation of all forms of drugs, and we shall strive our level best to see that we are in the drug-free society.
The government has also set up over 40,000 Eagle clubs in all major schools and colleges in the state to bring out awareness among the students against use of drugs. The state government is also taking all efforts to transform the North Andhra agency areas like Arakku and Paderu as brand ambassadors for Arakku coffee, with outlets set up in a big way as part of this initiative. For Parikrama, Henry, Akashwani, Vishakhapatnam.
झारखंड सरकार ने देश में पहली बार माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत की है। इसके तहत अब खदानों की रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से सीसीएल के साथ समझौता किया है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।
झारखंड पर्यटन विकास निगम जेटीडीसी और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के सहयोग से माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत हजारीबाग के नॉर्थ उरीमारी माइन से की गई है। इस अनूठी पहल के तहत पिछले दिनों राज्य के प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों को कोयला खदानों की कार्यप्रणाली, तकनीकी प्रक्रिया और पर्यावरणीय पक्ष से अवगत कराने के लिए एक विशेष टूर का आयोजन किया गया। राज्य के पर्यटन मंत्री देव्य कुमार ने कहा कि हमने सीसीएल के साथ मिलकर राज्य में खनन पर्यटन की दिशा में पहला कदम उठाया है। अब खनन क्षेत्र पर्यटकों, आम लोगों और शैक्षणिक समूहों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बीसीसीएल और सेल के साथ भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी हम लोगों ने बात की है। बोकारो स्टील सिटी के उनके प्लांट में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं।
झारखंड खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य है। देश की कुल खनिजों का लगभग 40% इस राज्य में मौजूद है। झारखंड पर्यटन विकास निगम की निदेशक विजया एन जाधव कहती हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य झारखंड के समृद्ध खनन विरासत को एक आकर्षक पर्यटन अनुभव में बदलना है। सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीसीएल के बारे में सिर्फ अधिकृत लोग ही जान पाते थे। अब इस एमओयू से आम लोग भी निर्धारित मानकों के साथ सीसीएल की कार्यशैली को नजदीक से जान सकेंगे। यह अभिनव कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पिछले दिनों बार्सिलोना स्थित गावा संग्रहालय में प्राचीन खनन तकनीकों और नवपाषाण युग के अवशेषों को देखने के बाद उठाया गया है। आशा की जा रही है कि माइनिंग टूरिज्म न केवल झारखंड के आर्थिक और औद्योगिक पक्ष को लोगों तक पहुंचाएगा, बल्कि राज्य के इस अनोखे पर्यटन उद्योग को भी नई दिशा देगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
और शगुन अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
यस करिश्मा, दिस इज अबाउट फुटबॉल, द स्पोर्ट अपडेट। मोहन बागान स्पोर्ट्स जायंट्स विल लॉक ऑन विद आर ट्राइबल ईस्ट बंगाल इंड्योरेंट कप क्वार्टर फाइनल एट द आइकॉनिक विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगण इन कोलकाता, एंड दिस इज एट 7 PM टुडे। बोथ टीम्स हैव स्टॉर्मड थ्रू द ग्रुप स्टेज अनबीटन। East Bengal topped Group A with a perfect 9 points, while Mohun Bagan secured same points in Group B.
और हम अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
This day is the death anniversary of Madan Lal Dhingra.
The wave of independence movement had started initially as a protest against the partition of Bengal, and it gradually grew into a demand for complete freedom. Indians realized the fact that a group of foreigners who came to our shores as traders had cleverly divided the people and started ruling them. The wealth of this vast land was systematically looted by them. The very same people who depended on us for their trade started crushing our cottage and village industries, treating the people of the soil as slaves. This naturally needed an equal and proportionate reply. The people revolted against the oppressors, and the country began witnessing sporadic protests. Cruel treatment to the freedom fighters, legendary heroes by the British, agitated youth, and one of such young freedom activists was Madan Lal Dhingra.
Madan Lal Dhingra was born on 18th of September 1883 in Amritsar, Punjab. He went to Lahore in 1900 to study at the Government College University. There, he was influenced by the nationalist movement, which at that time was about seeking home rule. Dhingra was specially troubled by the poverty of India. He studied the literature concerning the causes of Indian poverty and felt that the solution to these problems lay in Swaraj and Swadeshi. In 1904, Dhingra led a student protest against the principal's order to have the college blazer made of cloth imported from Britain. He was expelled from the college for this. In general, the incidence of revolutionary nationalism was on the rise during those days. This incident brought Dhingra closer to the revolutionary nationalism.
In 1905, Dhingra went to London and stayed in India House. India House was a student residence located in North London. With the patronage of lawyer Shyamji Krishna Varma, it was open to promote nationalist views among Indian students in Britain. It was in India House that Madan Lal Dhingra met V.D. Savarkar, who was then the manager of India House.
Meanwhile, on 8th of June 1909, Baba Rao Ganesh Savarkar, elder brother of Veer Savarkar, was sentenced to transportation for life. This deportation of Baba Rao Savarkar enraged the revolutionaries in London. William Hutkarzan Wiley was the head of the secret police then and had been trying to obtain information about Savarkar and other revolutionaries. It was because of Curzon Wiley that the revolutionary freedom fighters in London were being targeted. The Journal of Shyamji Krishna Varma, named the Indian Sociologist, described Wiley as old repentant foe of India who has fattened on the misery of the Indian peasant ever since they began their career. The resentment was such among the revolutionaries that somehow forced Dhingra to take an extreme step.
On 1st July 1909, Dhingra attended a gathering hosted by the National Indian Association at the Imperial Institute. William Hurt Curzon Wiley, the British officer, was also present in the meeting. At the end of the event, as the guests were leaving, Dhingra shot Curzon Wiley at point-blank range.
Dhingra was immediately arrested. At his trial, he represented himself, though he did not recognize the legitimacy of the court. He claimed that the gunning down of Curzon Wiley was a patriotic act and in retaliation for the inhuman killings of Indians by the British government in India. He was found guilty and sentenced to death. He was executed at Pentonville Prison on 17th of August 1909.
Young Madan Lal Dhingra had a comfortable and promising start to life. His English education assured him that, but that wasn't to be. He preferred to avenge injustice done to his countrymen. He knew it very well that avenging would entail untold misery for him, yet he took the plunge. Such was the determination of young Dhingra, and this and many more such sacrifices paved the way for a freedom that was to come many decades later.
Hello And what a coincidence it was that in 1947, the withdrawal of British forces started from 17th of August. On 17th of August, the first major unit made its exit from the former colony. A large contingent of the Royal Air Force sailed from Bombay to, as it was then known, back Great Britain. Of course, the total withdrawal of all British troops took time. It wasn't until February 1948 that the final departures took place.
British withdrawal signaled the end of the colonial Indian Army. Historians are predominantly in agreement that Lord Mountbatten's haste in withdrawing the British forces from India and essentially split the country.
इसके साथ ही आज पुण्यतिथि है महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की, जिनका नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस परंपरा से जुड़ा है जिसमें सुर साधना होती है। उनकी गायकी में भक्ति भाव और गहराई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मेवाती घराने के इस महान गायक ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को कई बार मंत्रमुग्ध किया। उनके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया।
Well, yes, as Krishma is telling us, his musical career spanned 75 years, resulting in the national and international fame along with respect and numerous major accolades. His legacy, well, it continues, and it includes memorable performances of classical and semi-classical vocal music, also classical and devotional music as well. And we have one such song. Let's listen in.
और इसके साथ ही आज पुण्यतिथि है माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। 1934 में बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में जन्मे मांझी साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनकी जिंदगी तब असाधारण बन गई जब उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की मौत सिर्फ इसलिए हो गई थी क्योंकि पहाड़ की वजह से समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सका था। इस गहरे दुख ने ही उन्हें वह करने की ताकत दी जिसे सुनकर दुनिया आज भी हैरान रह जाती है।
ओ राही रोशनी का सिपाही, ओ राही रोशनी का सिपाही, तू जो चलेगा तो राह बनेगी, ख्वाबों से तेरे ये दुनिया सजेगी।
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मांझी ने छेनी और हथौड़े से लगातार 22 साल तक अकेले पहाड़ को काटा और 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता बना दिया ताकि उनके गांव को अस्पताल और जरूरी सुविधाओं तक पहुंचाया जा सके।
ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।
की जीवनी पर फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनी, जिसमें मांझी का किरदार मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया और इस फिल्म का गीत ठोक दे किल्ली आज भी उनके संघर्ष के गूंज को काफी प्रदर्शित करता है।
यस, करिश्मा वाज टेलिंग अस अबाउट दशरथ मांझी, द मैन हु कार्व्ड अ माउंटेन फॉर लव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ म्यूजिशियन। I am talking about Pearl Bailey. Well, she has been a comedian as well and an author as well. Well, she has been awarded the Guild Life Achievement Award, the Screen Actors Guild Life Achievement Award. Also, her voice has been very, very famous amongst her fans as well. Listeners, this particular song that I am playing, this is St. Louis Blues.
If it wasn't for Paula,
और इसके साथ ही आज जन्मदिन है प्रसिद्ध हिंदी लेखिका अनामिका का, जिन्होंने समकालीन हिंदी साहित्य की उन रचनाओं में गिनी जाती हैं जिन्होंने कविता, आलोचना और उपन्यास सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी लेखनी में स्त्री संवेदना, समाज की जटिलताएं और मानवीय रिश्तों की बारीकियां साफ झलकती हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अनामिका की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई थी और उन्होंने अध्यापन और लेखन दोनों क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया था।
लेट मी नाउ टॉक अबाउट अ लिरिसिस्ट। His name is Ira Gershwin. He has collaborated with his younger brother and he has been a composer, George Gershwin, to create some of the most memorable songs in the English language. And this particular song, it is I Got Rhythm.
In green pastures, I got my man. Who could ask for anything more? Old man trouble.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।